नमस्कार भारत, 25 मई दिन शनिवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के संसदीय बोर्ड की बैठक आज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी हार के कारणों पर मंथन।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी से एक बात होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हम राहुल गांधी जी को प्यार करते हैं, गांधी फैमिली को प्यार करते हैं।
गुजरात के सूरत की एक इमारत में लगी आग से मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंची।
मेरी लड़की अभी बहुत सदमे में है, क्योंकि उसके साथ में जो बच्ची थी उसको मालूम चला कि वो लड़की की डेथ हो गई है।
और खास रिपोर्ट, पाकिस्तान सरकार की मदरसों पर नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी, क्या होगी कामयाब?
बहुत सारे तबके फौज के खिलाफ ये नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो ऐसे वक्त के अंदर मदारिस दीनिया को छेड़ना बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। गुजरात के सूरत में एक इमारत में लगी आग में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर इमारत में चलने वाले एक कोचिंग सेंटर के छात्र हैं। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया है और हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। फ्रांस के लियों शहर में एक शॉपिंग सेंटर के पास हुए धमाके में 8 लोग घायल हो गए हैं। धमाका एक बेकरी के पास हुआ और इसकी वजह एक विस्फोटक डिवाइस बताई जा रही है। चश्मदीदों का कहना है कि धमाके में उन्होंने नट, बोल्ट और कीलें उड़ती देखी। हादसे की एक चश्मदीद को सुनिए।
Ça a explosé et j'ai cru que c'était un accident de voiture et j'ai cru genre on s'approchait avec mon ami et en fait il y avait des gens qui tentaient.
यहाँ एक धमाका हुआ, पहले मुझे लगा कि कार एक्सीडेंट हुआ है। मैं और मेरी दोस्त गली में उस स्टोर पर गए जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहाँ मैंने चारों तरफ बिजली के तार, बैटरी, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बिखरी हुई देखी। मेरी दोस्त ये सब देखकर घबरा गई और उसे एंग्जाइटी अटैक आने लगे। फिर दुकान की एक लड़की हमें वहाँ से अलग एक कमरे में ले गई। थोड़ी ही देर में वहाँ सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं ठीक से समझ भी नहीं पाई कि वहाँ असल में हुआ क्या था। ये घबराहट पैदा करने वाला दृश्य था। ये थे धमाके की एक चश्मदीद महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केन्या के हाई कोर्ट ने देश में समलैंगिक संबंधों पर लगी पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। 3 जजों की एक बेंच ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि समलैंगिक संबंधों को अपराध ठहराने वाला औपनिवेशिक कानून केन्या के संविधान के खिलाफ है। केन्या का संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता, सम्मान और निजता का अधिकार देता है। हालांकि जजों ने अपने फैसले में कहा कि केन्या के मूल्यों को बचाए रखना उनका दायित्व है। जस्टिस रोजलिन अब्युरलई ने बेंच का फैसला पढ़ा।
In conclusion, therefore, having considered the arguments on both sides, the president cited the constitution.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम याचिकाकर्ताओं के तर्कों से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे मुताबिक मौजूदा कानून असंवैधानिक नहीं है, इसलिए हम समलैंगिक संबंधों में पाबंदी से राहत की अर्जी नकारते हुए इस याचिका को खारिज करते हैं। ये थे केन्या हाई कोर्ट की एक जज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में गर्भपात कानूनों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। यहाँ अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और प्लैंड पेरेंटहुड नाम के 2 समूहों ने अलबामा राज्य में लागू किए गए गर्भपात कानून के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के कई राज्यों ने गर्भपात से जुड़े कड़े कानून पारित किए हैं और अलबामा ने लगभग सभी मामलों में कराए जाने वाले गर्भपात पर कानूनी रोक लगा दी है। यहां तक कि बलात्कार और मां की सेहत के खतरे जैसी स्थितियों में भी गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अलबामा में यह कानून नवंबर से लागू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अमरीका समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो बलात्कार या मां की सेहत को होने वाले गंभीर खतरे के अलावा बाकी सभी मामलों में गर्भपात के खिलाफ हैं। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे के इस्तीफे की घोषणा के बाद अब उनके उत्तराधिकारियों के नाम की चर्चा है। जो नाम रेस में हैं वो हैं मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट और पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। देश में आम चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नतीजों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। उधर चुनाव में हार झेलने वाले दलों में मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आज वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। नमस्कार भारत में हम बात करेंगे इस राजनीतिक घटनाक्रम पर, लेकिन शुरुआत गुजरात के सूरत की खबर से। सूरत की एक इमारत में कल शाम आग लग गई थी। आग की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में ज्यादातर छात्राएं हैं जो इमारत की चौथी मंजिल पर फंस गई थीं। ऊपरी मंजिल पर फंसे छात्र छात्राओं में से कई ने आग और धुएं से बचने के लिए छलांग लगा दी। इनके ऊपर से कूदने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बीबीसी गुजराती सेवा के हमारे साथी रॉक्सी छारा ने इमारत से सुरक्षित निकलने में कामयाब रही एक छात्रा के पिता से बात की।
मैं आया यहाँ पे तो देखा तो यहाँ पे बहुत भीड़ था, 10-15 हज़ार लोग थे, और इसमें मैंने देखा तो पूरा एकदम खाक हो गया था। बाद में मेरे को जानने को मिला कि यहाँ पे वो जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो 45 मिनट पे पहुँच रहे हैं। यहाँ से वो सर रास्ता यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट में बोलता हूँ, वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं? मेरी लड़की अभी बहुत सदमे में है सर, क्योंकि उसके साथ में जो बच्ची थी उसको मालूम चला कि वो लड़की की डेथ हो गई है।
ये थे एक छात्रा के पिता परेश पटेल। रॉक्सी छारा को एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया वो भी सुनाते हैं।
एक घंटे के बाद तो फायर ब्रिगेड वाले आए थे, और उसके बाद आके फिर वो सीढ़ी लंबा आया, लेकिन उसको चौथे मंजिल पर पहुंची नहीं थी सीढ़ी, और पानी का फोर्स उसने खाली फेंका था, लेकिन वो डॉम तक पानी का फोर्स खाली पहुंचता था। लोग बचने के लिए वो वहां पे खिड़की थी, वो खिड़की से बच्चियां और बच्चे सब गिर रहे थे, और जो फायर ब्रिगेड वाले थे उसके पास नहीं कोई सेफ्टी के लिए वो पूरी जाली चाहिए, वो जाली भी नहीं थी।
ये थे घटना के एक और प्रत्यक्षदर्शी हितेश जासोलिया। हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सूरत पहुंचे। उन्होंने आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजन के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। हमारे साथी रॉक्सी छारा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रॉक्सी, स्वागत है आपका। एक बड़ा हादसा हुआ ये सूरत में, क्या कारण रहे इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि तुरंत तो अधिकारी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे।
जी अभी भी इसकी वैसे तो एक चीज क्लियर है कि ये जो फायर है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। जो यहाँ पर आई विटनेस है उनसे हमको मालूम पड़ा कि ये जो बिल्डिंग है तक्षशिला कॉम्प्लेक्स, इसके पास में एक गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ट्रांसफॉर्मर है, और उस ट्रांसफॉर्मर में आग लगने की वजह से वो आग फैल गई, और वो फैलते फैलते ऊपर तक पहुंची बिल्डिंग के पास में से।
जी लापरवाही की भी बड़ी बातें आ रही है कि फायर ब्रिगेड जल्दी आ सकती थी, दमकल कर्मी नहीं आ पाए, कुछ बचाने के इंतजाम नहीं थे। इस बारे में आपको और क्या क्या कुछ जानकारी मिली है?
जी देखिए, यहाँ पर जितने भी आई विटनेसेस और रिलेटिव्स से हम मिले हैं उनका ये कहना है, और जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं उससे भी जानने को मिला है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक्षशिला कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ी है, लेकिन उनके पास जो सीढ़ी है वो सीढ़ी चौथी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रही है, छोटी सीढ़ी लेकर आए, और उनके सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सामने से ही ये जो बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ रहे थे वो एक के बाद एक वहां से कूद रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो फायर ब्रिगेड वहां पर हाजिर होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाई, हेल्प नहीं कर पाई इन बच्चों को, और जो फायर को कंट्रोल करना चाहिए तो कुछ आई विटनेसेस हमको मिले, उन्होंने ये भी कहा कि पानी टैंकर में नहीं था, जो फोर्स से पानी ऊपर तक पहुंचना चाहिए वो पानी पहुंच नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से ये फायर ब्रिगेड की एक लापरवाही को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों
बहुत
में
सारी बातें हो रही हैं,
गुस्सा जानने को मिला। बहुत सारे लोग बहुत नाराज हैं, और यहाँ पर आज क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो पाटीदार समाज से हैं, तो पाटीदार का जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति है उसने आज सूरत बंद का ऐलान भी घोषित किया है।
जी, जो तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं वो काफी निराश करने वाली हैं। रॉक्सी छारा, इस अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देश में नई सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। आज एनडीए ने अपने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 5 बजे होगी। लेकिन इस बैठक से ज्यादा चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज होने वाली बैठक को लेकर है। ये बैठक 11 बजे बुलाई गई है। आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर जीत मिली है। पंजाब को छोड़कर उत्तर भारत में पार्टी का सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक एक सीट जीती है। वहीं दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी है। राज्य इकाइयों के पदाधिकारी इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी आला कमान पर भी दबाव बढ़ रहा है। हालांकि पार्टी नेता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता राजीव त्यागी को सुनिए।
इस तरह से इस्तीफे नहीं होते हैं किसी भी दल में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से एक बात होगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम राहुल गांधी जी को प्यार करते हैं, गांधी फैमिली को प्यार करते हैं, और हम बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी गांधी फैमिली है, हमें उन पे गर्व।
कांग्रेस पार्टी में दिक्कतें और भी हैं। पंजाब में कांग्रेस का किला बचाने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टार प्रचारक और अपनी सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज हैं। उन्हें सुनिए।
पाकिस्तान दे आर्मी चीफ दे नाल अपनी यारी दिखाउणी और जप्पियां पाउणियां वो साढ़े हिंदुस्तानी इस नूं बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके साढ़े सर्विस नूं। हाउ कैन इट बी कि उन्हां वो जिहड़ा जनरल हुक्म दिंदा है जिहड़े जवान उत्थे उहदे पाकिस्तान दे चलाउंदे ने साडे बंदे नूं मरदे ने एंड देन वी गो एंड हग दैट फेलो।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे जो सिद्धू का पाकिस्तान दौरा था वो लोगों के बीच में उसका सही संदेश नहीं गया और उन्होंने आलाकमान से सिद्धू को लेकर बात करने की बात भी की है। कांग्रेस के सामने पंजाब के दो दिग्गजों के बीच विवाद सुलझाने की चुनौती है, लेकिन बड़ी चुनौती वो है जो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होनी है। स्टूडियो में हमारे साथ वर्किंग कमेटी को लेकर ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार। प्रदीप जी स्वागत है आपका। क्या एजेंडा है सीडब्ल्यूसी का आज?
आप अगर देखें कि चुनावी नतीजे के बाद जो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा था ये मेरे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बीच की बात है। तो उस लिहाज से अगर आप समझें तो ये आज बहुत अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो कांग्रेस के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी समिति है और इसमें निश्चित तौर पर हार पर लेके आत्ममंथन होगा, पार्टी करेगी। और उसमें इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। अब वो स्वीकार होता है या नहीं होता है ये देखने की बात है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से पार्टी पूरे भारत में एक तरह से वाइप आउट जिसको कह लीजिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी का खाता नहीं खुल पाया,
केवल पंजाब ने और केरल ने बचाई है, तमिलनाडु ने इज्जत बचाई है थोड़ी सी।
उस स्थिति में कोई दूसरा नेता सामने आके पार्टी की स्थिति को संभालने के लिए तैयार होगा इसकी भी संभावना नहीं
जी,
है।
जैसा हम राजीव त्यागी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि गांधी परिवार के लिए जो सम्मान है, न्यूक्लियस है पार्टी का,
तो ये संभव है कि वो पेशकश करें और वो स्वीकार नहीं हो। लेकिन ये तय है कि इस बैठक में इस बात की पूरी पड़ताल होगी कि हम क्यों हार गए, खासकर उन तीन राज्यों में जहां पिछले कुछ महीने पहले सरकार बनी और वहां से पार्टी को 3 सीटें मिली हैं,
2 छत्तीसगढ़ और 1 मध्य प्रदेश में। प्रदीप जी यहां ये समझना भी जरूरी है कि पिछली बार 2014 में भी जब हार हुई थी, इससे ज्यादा बुरी हार थी, 44 सीटें कांग्रेस की आई थी, उसके बाद भी एक कमेटी बनी थी, जांच हुई, पड़ताल हुई, लेकिन जमीन पर कोई नतीजा नहीं दिखा।
क्या नतीजा नहीं दिखा इसलिए 44 से 52 तक ही पहुंच पाए। अगर अब यहां से नतीजे की ओर कांग्रेस नहीं जाती है और उसका संकट आम लोगों को, इसका अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वोट शेयर भी गिरा है उसका, हालांकि कुछ राज्य में बढ़े भी हैं वोट शेयर उसके, लेकिन अब उनको जो है एक तरीके से पूरी रणनीति के साथ और ये चुनाव की तैयारी चुनाव के वक्त नहीं करके आज से शुरू करनी पड़ेगी और उस दिशा में कुछ फैसला लेना पड़ेगा, तभी जाके वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में आ पाएंगे
अगर वो बदलाव करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरे अपडेट के लिए। चुनौतियां उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के सामने भी हैं। महागठबंधन यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के इरादे से तैयार हुआ था, लेकिन ये सिर्फ 15 सीट ही जीत सका। धरातल पर गठबंधन क्यों नाकाम रहा, सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव परिणाम आने से ठीक 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गठबंधन की सीटों को गिनाते हुए 60 के पार ले गए। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि सपा और बसपा के वोट एक दूसरे को भारी मात्रा में ट्रांसफर हो रहे हैं और साथ में अल्पसंख्यक वर्ग का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन परिणाम आने के बाद बीजेपी 60 के ऊपर सीटें ले गई और गठबंधन के हिस्से में महज 15 सीटें आईं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि इसकी सबसे अहम वजह यही है जिसे लेकर गठबंधन के नेता भारी आत्मविश्वास में थे।
वो गठबंधन शायद सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की जातियों तक सीमित रह गया, यानी यादव और दलित का। बाकी गैर जाटव और गैर यादव सारी कास्ट जो है या रिएक्शन में बीजेपी की तरफ चली गई या बीजेपी ने पहले ही उनको इतना उनपे काम कर रखा था, चाहे अपनी वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू या सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू की उनके कैंडिडेट्स को टिकट देना या जैसे अपना दल से अलायंस कर लेना, लास्ट मिनट में निषाद पार्टी को तोड़ लेना। जो बात अभी तक मायावती के लिए कही जाती थी कि उनकी सबसे बड़ी खूबी अपना वोट ट्रांसफर करा लेती हैं, इस बार गठबंधन की विफलता के बाद उनकी इस कला पर एक प्रश्न उठता है।
पिछले साल उपचुनाव में सफलता पाने के बाद सपा और बसपा एक दूसरे के काफी करीब आए और ये करीबी राजनीतिक गठबंधन में बदल गई। संयुक्त रैलियां की गईं और मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि 25 साल की राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी अब खत्म हो गई है, लेकिन शायद मतदाता इस संदेश को नहीं ले सके या फिर उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अमिता वर्मा कहती हैं,
इन्होंने ऊपर ऊपर तो अलायंस कर ली नेताओं ने, मगर नीचे की जो हॉस्टिलिटी थी यादवों और दलितों में जो 25 साल से चली आ रही थी, वो चीज डाइल्यूट नहीं हुई और वो वोट एक दूसरे के कैंडिडेट को नहीं गए।
गठबंधन में समाजवादी पार्टी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिल सकी। बहुजन समाज पार्टी को भी ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने लगभग एकतरफा वोट गठबंधन को दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां इन समुदायों के वोट सबसे ज्यादा हैं। पूरे प्रदेश में यूं तो गठबंधन के नेताओं की बीजेपी के साथ सीधी टक्कर हुई है, लेकिन कई जगह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ये चर्चा पहले भी हो रही थी कि कांग्रेस भी यदि गठबंधन में शामिल रहती तो परिणाम कुछ अलग हो सकते थे। अमिता वर्मा कहती हैं,
इन्होंने सिंपल अरिथमेटिक की कि इतने परसेंट दलित हैं और इतने परसेंट ओबीसी हैं और हम लोग मिलके वी आर 60%, तो इतना अरिथमेटिक नहीं होता। और अगर ये लोग कांग्रेस को ले लेते तो 1:1।
लेकिन सुभाष मिश्र ऐसा नहीं मानते।
टोटल गठबंधन में सबको देखे तो 17% समाजवादी पार्टी को मिला वोट, 19% बसपा को, 6% कांग्रेस को। अगर सबका मिला भी नहीं तो बीजेपी के 51% से बहुत कम। ये कहना कि नहीं अगर मिल जाते तो ये बहुत होता, ये नहीं है।
बहरहाल विपक्षी दलों में हार को लेकर समीक्षा शुरू हो गई है और गठबंधन की नाकामी को लेकर भी। लेकिन गठबंधन में शामिल पार्टियों के वोट यदि वास्तव में ट्रांसफर नहीं हुए हैं तो न सिर्फ गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठेगा बल्कि जाति आधारित राजनीति पर भी नए विमर्श की शुरुआत होगी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल ने प्रज्ञा ठाकुर को अपना सांसद चुना है। उनकी जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन भोपाल के आम लोगों का क्या कहना है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे।
भोपाल लोकसभा सीट पर हुई बहुचर्चित चुनावी लड़ाई में कल भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में ही भाजपा की जीत के बाद से ही पार्टी के दफ्तर पर और उनके समर्थकों में जोश का माहौल था, जो आज भी जारी है। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार हुई प्रज्ञा ठाकुर 9 साल जेल में बिता चुकी हैं। उन पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट या मकोका के तहत लगे आरोप तो रद्द हो गए, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या UAPA के तहत उन पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। 20% मुस्लिम आबादी वाला यह नतीजों के बारे में क्या सोचता है, यह जानने की हमने कोशिश की।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो फैक्टर है ये काम के छोड़ के जो हिंदुत्व फैक्टर है वो चला है। बस ये है कि एक डर खौफ लोगों को पैदा होगा कि एक टेररिस्ट पे केस मुकदमा चल रहा है, वो जीत गए यहाँ से, और उनके जो इससे पहले भी जो बयान थे, इससे पहले जो राम मंदिर के उन्होंने कहा था कि हम नहीं राम मंदिर को तोड़ा था, कि वो उस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं थी, तो लोगों में इनसिक्योरिटी होगी।
जो जीत चुकी हैं वो आगे जो भी काम करे अच्छे ही करे, बस ये उम्मीद रखते हैं। अब मुकदमे तो ऐसे हैं कि वो तो भूल जाइए उस चीज को।
5 साल में नहीं पड़ा तो अब क्या पड़ेगा बताइए।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
आज भी अभी भी मोबाइल में वीडियो देखा तो गंदा पानी पी रहा, गंदा ही पीते रहेंगे बस, चाहे वो भाजपा हो या कोई भी हो।
कलाई नतीजों को लेकर हमने भोपाल के गैस पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की।
पार्टी की वजह से दिया है ये वोट, उनकी वजह से नहीं दिया। उन्हीं के जो पार्टी के लोग थे कि उनको उन्होंने बताया गया कि नहीं साहब उनको फंसाया गया है, इस कांड में फंसाया गया है, तो आदमी ने ये सोचा कि उसको पूरी प्रक्रिया तो मालूम नहीं होती, तो इस मामले में लोगों ने ज़्यादा फिर तवज्जो नहीं दी कि पार्टी को देना है अपनों को, पार्टी को आगे निकालना है, तो इस वजह से वोट दिए गए।
देखो पार्टी को देख के अपन ने वोट दिया है, उनको देख के नहीं दिया, वो तो जेल में सब जमाने में रह के आई है, हमने तो पार्टी को देख के वोट दिया और पार्टी को जो है कि काम करना चाहिए, गरीब जनता की मदद करनी चाहिए।
स्वाभिमान संस्थान के संयोजक अब्दुल जब्बार को लगता है कि भाजपा ने इस चुनाव में ध्रुवीकरण करके जीत हासिल की है।
कुल मिलाकर भोपाल में जो डिवीजन हुआ है बात साफ है कि लगातार जो नफरत का इन्होंने माहौल बनाया उसका नतीजा है कि इस तरह का वातावरण जो अब बनाया गया है ऐसा पहले कभी नहीं था और मैं इससे डर जाता हूँ।
नतीजों के बाद भोपाल की जनता में प्रशासनिक उदासीनता को लेकर निराशा तो है लेकिन नए निर्वाचित प्रतिनिधि से विकास और अमन की उम्मीद भी है। प्रियंका दुबे, BBC भोपाल।
और अब आज के अखबारों की बात सिंधु वासनी के साथ। जी सिंधु।
वात्सल्य, आज के लगभग सभी अखबारों में सूरत में हुए दर्दनाक हादसे की खबर पहले पन्ने पर दिख रही है और खबरों के साथ ही हादसे की तस्वीरें भी अखबारों में हैं जो काफ़ी डरावनी और दर्दनाक हैं। वो वीडियो फुटेज के ग्रैब्स लगाए हैं अखबारों में जिसमें छात्र कूदते हुए दिख रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान टाइम्स में देख रही हूँ कि इसके पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, BJP अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर है। मोदी और शाह ने शुक्रवार को आडवाणी से मुलाकात की थी, ये उसी मुलाकात की तस्वीर है। अखबार लिखता है कि PM मोदी आज से अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत करेंगे और शुरुआत 1000 एजेंडों के साथ होगी।
और ये शुरुआत थोड़ी बदली हुई लग रही है जो आपने मुलाकात का जिक्र किया। पिछली बार लगातार कार्यकाल जो उनका रहा, मार्गदर्शक मंडल की बात ज्यादा होती रही थी।
जी। और हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि इस बार लोकसभा में 78 सीटों और 14.6% आंकड़े के साथ महिलाओं की संख्या पहुंच गई है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। हालांकि अनुपात अब भी बहुत कम है लेकिन धीरे धीरे ही सही शायद सुधार हो रहा है। और बाकी के अखबारों में भी प्रधानमंत्री मोदी और BJP से ही जुड़ी खबरें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मेरे सामने नवभारत टाइम्स है और इसमें खबर, इसकी सुर्खी है कि मोदी के नए दरबार में नंबर 2 का सवाल क्यों। ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह को कैबिनेट में कोई अहम पद मिल जाएगा तो फिर
मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही
हैं, उनकी जगह कौन लेगा ये एक सवाल है। और मैं इंडियन एक्सप्रेस देखती हूँ तो इसके फ्रंट पेज पर भी PM मोदी की ही तस्वीर है जिसमें वो मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
BBC इंडिया बोल। भाइयों
बहनों, नरेंद्र मोदी की लगातार दूसरी बार चुनावों में प्रचंड जीत। क्या मोदी अब BJP से बड़े हो गए हैं? क्या है मोदी के जीत के मायने? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। 25 मई शनिवार को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001
पर। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरेसा मे की जगह कौन लेगा? टेरेसा मे पद छोड़ने वाली हैं और उनकी जगह लेने के लिए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे आगे बोरिस जॉनसन बताए जा रहे हैं लेकिन विपक्ष की मांग है कि अब चुनाव होने चाहिए। ज्यादा ब्यौरा दे रही हैं सिंधु वासनी।
I just don't think she had either the intellectual, unfortunately, or the personality to do the job that she.
मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस काम के लिए जरूरी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व था। मुझे ये भी लगता है कि वो क्या कुछ कर सकती थी, हमें ये देखने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सारी चीजें सिर्फ ब्रेग्जिट के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये एंटी ब्रेग्जिट कैंपेनर यानी ब्रेग्जिट के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली जिना मिलर के शब्द हैं। जिना कह रही थी कि टेरेसा मे इस काम के लिए सही शख्स नहीं थी। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के इस्तीफे की घोषणा के बाद ब्रिटेन में सियासी हलचल तेजी से बढ़ रही है। मे ने इस्तीफे का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया लेकिन वो पद 7 जून को छोड़ेंगी। नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक मे पद पर बनी रहेंगी। वहीं प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन समेत कई नेताओं ने मांग की है कि टेरेसा मे के पद छोड़ते ही आम चुनावों का ऐलान होना चाहिए लिबरल पार्टी के नेता इयन लावरी कहते हैं,
We cannot have a situation where before our very eyes we see this government.
हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते जहां हमारी आंखों के सामने सरकार इतनी विभाजित और छिन्न भिन्न हो, बद से बदतर हो रही हो, हर रोज मंत्री इस्तीफा दे रहे हों। इस देश के लिए हमें नया नेता चाहिए, आने वाले दिनों में चुनाव होने चाहिए। ये थे विपक्षी लेबर पार्टी के नेता इयन लावरी के शब्द। अब टेरेसा मे की उत्तराधिकारी यानी ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित नामों पर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। फिलहाल 12 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिनके प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान सरकार ने मदरसों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इस कोशिश का क्या असर है, सुनिए शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट।
पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुए तनाव और दिल्ली की जानिब से इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में काम करने वाली जैशे मोहम्मद पर लगाए जाने के कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान में मदरसों पर कंट्रोल बेहतर बनाने के लिए नई पॉलिसी लाने का फैसला हुआ। इसका ऐलान पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।
इस्लाम की और दीन की तालीम जैसे है वैसे चलती रहेगी, लेकिन हेट स्पीच नहीं होगी।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में मौजूद 30,000 मदरसों को अब शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री शफकत महमूद कहते हैं कि नई पॉलिसी के तहत हर मदरसे के लिए खुद को रजिस्टर करवाना लाजमी होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होगा कि पाकिस्तान के सारे कानून पे अमल हो, किसी किस्म की नफरत ना फैलाई जाए, किसी फिरका वारियत ना की जाए, रियासत के खिलाफ कोई बात ऐसी ना की जाए जो रियासत के खिलाफ हो। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको टाइम देंगे थोड़ा सा कि महीना डेढ़ के जी आप रजिस्टर कराएं, अगर नहीं करेंगे तो उनको बंद करना पड़ेगा।
पाकिस्तान में पहले भी मदरसों पर राज्य की गिरफ्त मजबूत करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जिसमें हमेशा ही हुकूमत को दिक्कत का सामना रहा। इस्लामाबाद के बीच में मौजूद लाल मस्जिद मदरसों पर सरकारी कंट्रोल के खिलाफ रेजिस्टेंस का बड़ा निशान है। 2006 में अपनी व्याख्या की शरीयत नाफिज करने के लिए लाल मस्जिद और इससे जुड़े मदरसों के छात्रों ने 18 महीने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ करते रहे। पाकिस्तान की सेना ने फौजी ऑपरेशन के बाद इन पर काबू पाया, जिसमें कई लोग मारे गए। लाल मस्जिद के प्रबंधक मौलाना अब्दुल अजीज नई मदरसा पॉलिसी को आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं।
पहले ही हालात मुल्क में जो हो रहे हैं खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। नतीजा यह है कि यहाँ हम पहुँचे खड़े हैं कि आज कौम के बहुत सारे तबके फौज के खिलाफ ये नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इससे कि जब आप आओ देखा ना ताओ फैसले करेंगे जिसमें कोई जो है वो तहकीक नहीं होगी, तो ऐसे वक्त के अंदर मदारिस दीनिया को छेड़ना बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा।
सुरक्षा विश्लेषक आमिर राणा मानते हैं कि मुख्तलिफ विचारधारा रखने वाले मदरसों को एक निज़ाम के तहत लाना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर होगा।
मदारिस की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रियासत अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए तैयार है उसको डील करने के लिए, उसमें हाथ डालने के लिए। दूसरा फिर ये तालीम के मसले के तौर के ऊपर जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़ा वेग किस्म के आइडियाज़ हैं, हुकूमत के पास भी, हमारे बाकी इदारों के पास भी, इवन के जो मदरसा से वाबस्ता जो लोग हैं उनके पास भी कोई वाज़े और क्लियर अप्रोचेज नहीं है।
जैशे मोहम्मद और जमात उद्दावा की तरह गैर कानूनी करार दिए गए संगठनों के साथ जुड़े 182 मदरसों को सरकार पुलवामा हमलों के बाद पहले ही कंट्रोल में ले चुकी है, लेकिन इन मदरसों और यहाँ शिक्षा लेने वाले छात्रों के साथ नई पॉलिसी में क्या सलूक होगा ये अभी वाज़े नहीं। शुमाला जाफरी, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
और आखिर में मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
BBC समाचार। गुजरात के सूरत में एक इमारत में लगी आग में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर इमारत में चलने वाले एक कोचिंग सेंटर के छात्र हैं। फ्रांस के लियों शहर में एक शॉपिंग सेंटर के पास हुए धमाके में 8 लोग घायल हो गए हैं। धमाका एक बेकरी के पास हुआ और इसकी वजह एक विस्फोटक डिवाइस बताई जा रही है। केन्या के हाईकोर्ट ने देश में समलैंगिक संबंधों पर लगी पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे के इस्तीफे की घोषणा के बाद अब उनके उत्तराधिकारियों के नाम की चर्चा है। अभी जो नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं वो हैं मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट, पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन, एस्टर मैकवे और रोरी स्टुअर्ट। टेरेसा मे ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था, लेकिन वो 7 जून तक पद पर बनी रहेंगी। अमरीका में गर्भपात कानूनों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के कई राज्यों ने गर्भपात से जुड़े कई कड़े कानून पारित किए थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात शाम के वक्त 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। तब तक खबरों की जानकारी के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।